राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम जय राधा वृंदावन बिहारी। राधा वृंदावन बिहारी। राधा वृंदावन बिहारी। राधे राधे। जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौर हरि। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी ब्रह्मोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत आज के ब्रह्मोत्सव के कार्यक्रम में। तो आपने देखा आज सुबह आपने एक नाटिका देखी होगी बोडाना जी के जीवन के ऊपर, कैसे डाकोर में भगवान रणछोड़ राय स्वयं पधारते हैं स्वयं की इच्छा से। इस नाटिका से हमको पता चलता है कि केवल हम चर्म चक्षु से, हमारे आँखों से, चाहे उसके ऊपर कितना भी बड़ा चश्मा लगाया हो, फिर भी हम भगवान को नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप लेके भी नहीं देख सकते, टेलीस्कोप लेके भी नहीं देख सकते। तो इसके लिए कौन सी आँखों की जरूरत है? प्रेमाञ्जनच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हाँ, भगवान कहते हैं कि केवल हम जब प्रेम की आंखें जब हमारी निर्माण होती हैं, तभी हम भगवान को स्वयं रूप में देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाई तीन चिदानंद रूप। तो कह रहे भगवान का नाम, भगवान के विग्रह जो हमने अभी देखे, जिनका इतने अच्छे तरीके से अभिषेक कराया गया, और भगवान का स्वरूप, इन तीनों में कुछ भी भेद नहीं है। तीनों चिदानंद रूप है। चिदानंद रूप का मतलब है हमारा जो शरीर है वो क्या अस्थि मज्जा स्नायु खून इससे रक्त इससे बनता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है कैसे बना है? सच्चिद आनंद। सत मतलब भगवान के शरीर को कभी उसमें बदलाव नहीं देखा जाता। आपने अपना फोटो सेल्फी देखा होगा 10 साल पहले का और अभी का सेल्फी आप देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, शायद से आप पहचान भी नहीं पाएंगे। अरे मैं इतना पतला था पहले, अभी इतना मोटा हो गया, जो भी है मतलब, या उल्टा, इतना मोटा था मैं अभी अभी इतना पतला हो गया। तो हमारा हमारे शरीर में बदलाव आता रहता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है भौतिक गुणों से, भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और जिसमें बदलाव आता रहता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है सत कहा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और चित्त कहा है? चित्त मतलब संपूर्ण ज्ञान से पूर्ण। हमारा शरीर संपूर्ण ज्ञान से पूर्ण नहीं है, अज्ञान से पूर्ण है। और तीसरा कहा है आनंद पूर्ण, सच्चिद और आनंद। अपना शरीर आनंद से पूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत सारी व्याधियां आती हैं जब धूप 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 है, छाव है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, अलग अलग प्रकार की व्याधियां हैं, जन्म है, मृत्यु है। ऐसा हम में से कोई बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं मुझे तो मृत्यु नहीं होने वाली, मेरे ऊपर कुछ एक्सपायरी डेट नहीं लगाई गई है। जैसे औषधों के ऊपर एक्सपायरी डेट रहती है, बराबर, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो वैसे हमारा भी शरीर क्या है? बेस्ट बिफोर 70 ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 70 या 75 साल, आजकल तो और भी कम, 60 साल 50 साल। आज हम सुनते हैं कि 30-35 साल के युवकों को भी हार्ट अटैक आता है, बराबर, डॉक्टर हैं इधर। तो हार्ट अटैक मतलब किसी भी उम्र में आ सकता है। तो बेस्ट बिफोर का जो स्टैम्प है वो कम होता जा रहा है, उसका जो एक्सपायरी शेल्फ लाइफ जो हमारा है वो कम होता जा रहा है। तो लेकिन भगवान का कैसा है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो इससे हम हमें भगवान के विग्रह और हमारे में अंतर पता चलता है। लेकिन हम भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो हम कहते हैं अरे हम तो भगवान के अंश हैं, हमारे साथ ऐसा चीटिंग कैसा किया गया। भगवान का तो सच्चिदानंद स्वरूप है और हमारा अचित निरानंद असत स्वरूप है, ऐसा कैसा किया गया। अगर आप मान लो आपको दिख रहा है कि टंकी में पानी है, तो आप बोतल में से पानी निकालते तो क्या आता है, पानी आता है, दूध आता है, क्या आता है, पानी ही आता है, बराबर। तो अगर हम भगवान के अंश है परिमाणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हम भी वैसे ही होने चाहिए। हाँ तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं है। तो उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कोई अमीर व्यक्ति का बेटा है, वो नैसर्गिक रूप से क्या है, अमीर है या गरीब है, अमीर है। जब तक वो मानता है कि ये मेरा बाप है, तब तक जब वो भूल जाता है कि ये मेरा बाप है, तो क्या होता है, किसी किसी को कुछ बीमारी होती है, कुछ भूलने की बीमारी होती है, मतलब एक उस हद तक वो बीमारी होती है कि व्यक्ति अपना नाम भी भूल जाता है। तो क्या होता है कि वो जानता नहीं है कि उसका पिता कौन है। क्या कुंभ के मेले में मान लो घूम गया वो और उसका पिता बहुत ही अमीर व्यक्ति है, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, हाँ भूख लग गई उसको तो जाके भीख मांगता है, अरे मुझे थोड़ा सा चपाती दो या जो भी है, कहीं शहर में खोया रहेगा तो बोलेगा बर्गर दो या जो भी तो इस तरीके से भिक्षा मांगते हुए घूम रहा है। तो कोई एक दयालु व्यक्ति का क्या करता है, दयालु व्यक्ति उसको ठीक है तुमको बर्गर चाहिए ना बेटा, ये ले बर्गर ले, ऐसा बोल के उसको छोड़ देता है, या पता करता है कि अरे दिखा तुम्हारा आई कार्ड दिखा बेटा तो आई कार्ड पे देखता है, उसको तो पढ़ने को नहीं आता, जूनियर केजी का बच्चा है मान लो, लेकिन आई कार्ड आप भी बचपन याद करते होंगे, तो आई कार्ड पे देखता है पता, अरे इसका पता तो गोलोक वृंदावन है, इसका नाम तो कृष्णदास है, ये कौन सा नया नाम लेके घूम रहा है तो इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या करता है, उसको बोलता है कि बेटा चलो मेरे साथ, तुम्हारे पिता से तुमको मिलवाता हूँ, क्यों इधर भीख मांग रहा है, तुम्हारा पिता करोड़पति है। तो ये जो दयालु व्यक्ति हैं वो हैं श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, और जो भटके हुए जो बच्चे हैं वो है हम सब, एटलीस्ट मेरे बारे में बोल सकता हूँ और हमारा पता जो है वो आध्यात्मिक जगत का पता है हमारा, लेकिन हम घूम रहे हैं इस जगत में। तो इसलिए सबसे पहली बात, प्रभुपाद जैसे जैसे आचार्य क्या करते हैं, हमको भगवान के बारे में बताते हैं कि हमारा आइडेंटिटी आई कार्ड क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण के हम नित्य दास हैं, और ये भूलने के कारण हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत में घूम रहे हैं। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, किसी की याददाश्त चली जाती है तो भूल जाता है कि वो कौन है, क्या कर रहा है, किधर है। तो जिसकी याददाश्त चली जाती है उसके ऊपर क्या उपाय करते हैं डॉक्टर लोग, शॉक देते हैं मत बोलना थोड़ा अच्छा उपाय बताइए, क्या क्या करते हैं, आपने देखा होगा या सुना होगा, या क्या करते हैं, पुरानी यादें ताजा करवाते हैं, क्या कैसे ताजा करवाते हैं उसकी पुरानी यादें। हाँ जैसे बेटा तुमको मालूम है, तुमको उसको बताते हैं, उसको पहले गाजर का हलवा बहुत पसंद था, प्रभु जी बोल रहे हैं, तो उसको गाजर का हलवा खिलाते हैं, बोलते हैं कुछ याद आया, नहीं थोड़ा थोड़ा याद आया फिर बोलते हैं अरे हाँ, उसके उसके स्कूल पे लेके जाते हैं, पुराने स्कूल स्कूल पर, हाँ बेटा तुम्हें याद है कैसे मैं तुमको मार मार के तुम्हारे स्कूल लेके जा स्कूल के लिए लेके जाता जाती थी या जाता था, माता पिता कहते हैं उसके, तो वो कहते हैं हाँ कुछ कुछ तो याद है, वो टीचर का चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है लगता है बहुत पिटाई की थी उसने मेरी पहले। तो इस तरीके से उसको ऐसे स्थल पर लेके ले जाया जाता है जहां पे वो पहले जाता था, या फिर ऐसी चीजें उसको खिलाई जाती थी जो उसकी पहले फेवरेट थी, हाँ, या फिर ऐसे उसको व्यक्ति के साथ मिलाया जाता था जो उसकी पहले जीवन की उसकी उस उसका कुछ कुछ तो उसका ताल्लुक था, संबंध था। तो बिल्कुल उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी एक डॉक्टर हैं और हम क्या हैं, पेशेंट हैं जो हमारी याददाश्त खो चुके हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया, हरि नाम दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में यही गाते थे जब भी हम थे तभी, हमारे याददाश्त खोने से पहले। तो फिर धीरे धीरे हमको याद आएगा जब भी हम उत्कंठा से हरि हरि नाम का जप लेंगे तो हमको हमारी याददाश्त वापस आएंगे। और क्या प्रभुपाद जी ने दिया, विग्रह दिए हैं, हाँ, भगवान के विग्रह दिए हैं। जैसे किसी व्यक्ति का फोटो दिखाया जाता है, हाँ देखा, हाँ ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, या फिर आपको उस वातावरण में लेके जाना है। जैसे ये प्रभुपाद कहते हैं, ये मंदिर क्या है जो प्रभुपाद जी ने सारे मंदिर बांधे हैं, वो बोले मंदिर केवल मंदिर नहीं है, ये क्या है, ये स्वयं भगवत भगवान का धाम है, भगवत धाम की प्रतिकृति है ये, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है। तो यहाँ आने से हमको पता चल जाता है, याद आने का चांस है कि हम पहले क्या कर रहे थे। तो बिल्कुल यही चीज कर रहे थे जो हम अभी किए। ऐसे ही हम आध्यात्मिक जगत में, और जब भी जाएंगे, पता नहीं कभी जाएंगे, लेकिन जब भी जाएंगे तभी क्या करेंगे, तो ऐसे ही भगवान का अभिषेक करेंगे, ऐसे ही भगवान का उत्सव मनाएंगे, ऐसे ही भगवान का गुणगान करेंगे, ऐसे ही भगवान का गुणों का श्रवण करेंगे, ऐसे ही भगवान के लिए नाटक करेंगे, जिससे भगवान के गुणों का श्रवण सब कर पाए। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी ने पूरा एक पैकेज दिया है हमको, जिसमें हाँ ये भगवान है, भगवान के विग्रह हैं। तो अभी हमको शायद से पता नहीं चल रहा है कि हम भगवान के कितने निकट है, लेकिन धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण देते हैं। हाँ जैसे जैसे कोई एक, हाँ, पुराने जमाने में एक कन्या का विवाह होता था तो वो कम उम्र में हुआ करता था, जब वो 8 9 10 साल की रहती थी तभी उसका विवाह किसी वर के साथ किया जाता था। लेकिन विवाह होने के बाद वो कन्या जो है वो अपने मायके ही रहती थी जब तक बड़ी ना हो जाए तब तक। और क्या होता था, उसका जो वर जो है, पति जो है, हाँ, वो भी जो उससे 2 साल बड़ा है या 3 साल बड़ा है जो भी, हाँ, वो हर दिवाली, हर हर दशहरा, हर होली में अपने ससुराल आता था। और वो जो कन्या है, कन्या की माता और पिता उसको सिखाते थे, कह रहे वो जो उधर बैठा है ना लड़का, उसको जाके एक समोसा दे के आओ या पेड़ा दे के आओ। तो वो समझ नहीं पाती थी, वो थे वो उसको गाय को, उससे अच्छा मैं खा लेती हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए अलग से बना है, तुम उसको जाके देखे हो। तो उसको, हाँ, परोस के आती थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, कौन है यार, कहाँ से आ गया, हाँ किसको, हाँ, परोसना पड़ रहा है, नया व्यक्ति है। लेकिन ऐसा करते करते, ऐसा हर साल, हर दिवाली, हर दशहरा, ऐसा करते करते 5 6 7 साल बाद, हाँ, जब उसको समझता था सच में कि ये कौन है, अरे उसको समझ में आता है कि ये पति का मतलब क्या है। तो पहली बार, अभी 7 8 साल से तो वही परोसती थी, लेकिन पहली बार वो क्या करती है, शर्मा जाती है कि उसको समझ में आता है, अरे ये तो पति है। बिल्कुल उस प्रकार हम जब विग्रहों के सामने आते हैं, हम तो बोले अरे क्या है ये, विग्रहों के सामने ऐसा दिया दिखाने को बोल रहे हैं, क्या ये विग्रहों को, हाँ, अभिषेक करने को बोल रहे हैं, उनके सामने नाचने गाने को बोल रहे हैं। लेकिन जब भी हम थोड़ा प्रगत होंगे तो हमको पता चले, अरे ये तो भगवान है, अरे तो मेरे स्वामी है। तो ये जब हमको पता चलेगा, तो अभी तो हमको केवल जैसे वो कन्या माता पिता का मानती है, उसको तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, लेकिन उसका प्रभाव कुछ सालों में दिखाई देगा। वैसे ही हम, प्रभुपाद जी कह रहे हरे कृष्ण जपो, तो ठीक है, अभी हमको शायद से नींद आती होगी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन फिर भी हमको करते रहना चाहिए, जब करते रहना चाहिए, जितना उत्कंठा से हो सके करते रहना चाहिए, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान तो वैसे हैं, जैसे हमने देखा कि प्रेम अंजन से ही दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, बोले कि इतना प्रेम के अंजुन अंजन प्राप्त करने के लिए कौन वेट करेगा, तब तक ये भौतिक आंखों से देखने लायक स्वरूप में ही मैं उसके सामने जाता हूं। तो इसलिए विग्रह के रूप में भगवान हमारे सामने प्रस्तुत है। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि विग्रह कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शिला है या पत्थर के बने हैं या धातु के बने हैं या लकड़ी के बने हैं। तो भगवान स्वयं, चाहे धातु हो या कोई लकड़ी हो, सब क्या है, भगवान की शक्ति है। और भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से किसी भी भगवान के शक्ति के द्वारा खुद प्रकट हो सकते हैं, स्वयं प्रकट हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी, एक बार प्रभुपाद जी के एक खास शिष्या थी, बहुत ही आ, आ, बड़ी भक्त थी, यमुना देवी करके। तो एक बार उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण को किसी और पुजारी ने सूखा फूल का माला डाल दिया है। तो प्रभुपाद जी ने यमुना देवी जी को बुलाया और बोला, ये क्या है? अगर आप सोच रही हो कि अरे ये तो पत्थर का मूर्ति है, इसको हम हाँ सूखा फूलों का माला पहना पहना के हाँ फंसा सकते हैं तो बोले कि ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आपके जीवन के अंत तक भगवान आपको पत्थर के रूप में ही देखेंगे, भगवान के रूप में देखेंगे ही नहीं। तो यमुना देवी को एक बड़ा, वो अपने पुस्तक में ने व्यक्त करती हैं कि भगवान को हमेशा हमको क्या सोचना चाहिए, कि ये स्वयं भगवान आध्यात्मिक जगत से अवतीर्ण है, जिनकी हम स्वयं सेवा कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की भगवान की सेवा की जा सकती है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे कि विग्रहों की सेवा किस किस प्रकार की जा सकती है। तो हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार हमारा मूल, जब भी हम हमारा जो मूल कार्य है कि क्या है, भगवान की सेवा करना। और ये सेवा करने से ही हमारा हृदय संतुष्ट हो सकता है। हमने जीवन में अनेक अनेक प्रकार कोशिश किया सुखी होने का, लेकिन जब तक हमारा, जब हम भगवान की अहितु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे ही अगर हम भगवान को विविध प्रकार के भोग अर्पण करेंगे तो हम सुखी, हमारा हृदय संतुष्ट होगा। भगवान को आदर करेंगे तो हमारा हृदय संतुष्ट होगा, भगवान का श्रृंगार करेंगे तो हमारा हृदय संतुष्ट होगा। क्योंकि भगवान की संतुष्टि में ही हमारी संतुष्टि है। तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं कि एक जैसे आईना है, मिरर, उसमें हमारा प्रतिबिंब है, दिखता है हमको। ठीक उसी प्रकार हम क्या है, भगवान के प्रतिबिंब के समान है। कोई प्रतिबिंब को मेकअप करता है क्या? माताओं यहाँ पे जानती होगी, या फिर कोई प्रतिबिंब को पाउडर लगा सकता है क्या, या प्रतिबिंब को परफ्यूम लगा सकता है क्या, सुगंध लगा सकता है क्या? नहीं। हाँ सुगंध तो व्यक्ति को लगाना पड़ेगा। जो श्रृंगार तो व्यक्ति का करना पड़ेगा, तो प्रतिबिंब का रूप भी सुंदर दिखेगा। वैसे ही हमको भगवान को जब हम को जब संतुष्ट करेंगे तो ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं तो क्या, हम क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी संभव नहीं है। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, सिनेमा, जिसमें एक हीरो होता है, वो विलन से बहुत मार खाता है और इधर 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 ऐसा काला नीला हो जाता है उसका। तो उसके बाद वो थोड़ा सा पी लेता है और थोड़ा नशे में चला जाता है, और वो क्या करता है, आईने के सामने आता है और बहुत कुछ बड़बड़ाता है और बोलता है, अरे क्या हाल हो गया अरे तेरा, कैसा आंख नीला काला हो गया। तो बैंडेड लेता है और उसको थोड़ा पट्टी लगाने का कोशिश करता है, अरे हिल मत हिल मत, तुमको लगा रहा हूँ मैं ऐसा करके। तो ये तो बहुत ही विनोदी प्रसंग है कि जिसमें हम देखते हैं कि लगा है व्यक्ति को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बैंडेड किसको लगा रहा है, आईने को लगा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा पिया हुआ है। जब उसको उतरेगी तब समझ में आएगा कि अरे मैं अभी तक प्रतिबिंब को बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहा था, दवाई लगाने की कोशिश कर रहा था। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सुख के लिए खुद को संतुष्ट करने के, हम तो प्रतिबिंब के समान है, प्रतिबिंब को दवाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिबिंब को श्रृंगार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। जब भी हम होश में आएंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए सोचना चाहिए। तो इस प्रकार हम भगवान की विविध प्रकार से सेवा कर सकते हैं, जिससे हमारा हृदय संतुष्ट होगा, क्योंकि भगवान के संतुष्टि में ही हमारी संतुष्टि है। तो हम विग्रहों की परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी जी थे, वो बूढ़े होने तक, 70-75 साल बूढ़े होने तक क्या किए, परिक्रमा किए। वो इशारा आने कृपा, हाँ ओके ठीक है। तो इतने बूढ़े हो गए फिर भी वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। फिर भगवान ने सपने में आके उनको बताया कि अरे आप अभी बूढ़े हो गए हो, अभी आप, उनको एक शिला दिया गया, शिला के ऊपर भगवान के चरण थे, कहा कि आप इस शिला की 4 बार प्रदक्षिणा करो। तो एक तरीका है कि भगवान की मंदिर की प्रदक्षिणा करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान के सामने हम नृत्य, कीर्तन, स्तुति, गीत, ऐसा करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा भगवान का दर्शन लेना चाहिए, भगवान सामने खड़े हैं, आते हैं, आधा सेकंड दर्शन लिया नहीं, ऐसा ऐसा करते हैं और ऐसा करके चले भी जाते हैं। तो ये तो अच्छा है कि एटलीस्ट भगवान के सामने आ रहे हैं और हाँ, जो भी गलती किया उसकी क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन भगवान इसलिए क्यों, किस लिए खड़े हैं, ताकि आप उनका दर्शन लो अच्छे से, चरणों से लेके सर तक कितने सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है, वो दर्शन लो। भागवत में अनेक प्रकार के श्लोक दिए हुए हैं, भगवान के चरण कैसे हैं, कोमल, कमल की तरह कोमल है, उसके ऊपर ध्यान दो, भगवान के चरण कैसे हैं, तो स्वयं लक्ष्मी जी उनका सेवा करती है उन चरणों का। तो ऐसे दर्शन लेते लेते हमको भगवान के बारे में सोचते रहना चाहिए। व्यालम विपी परिवाससी, क्या वो, तो भगवान कैसे 3 जगह पे बांके हुए हैं, कितने सुंदर तरीके से खड़े हुए हैं, कैसे भगवान अपने हाथ में वेणु धारण किए हुए हैं, हाँ, कैसे भगवान का स्मित हास्य जो है, वो भगवान का स्मित हास्य देखकर हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होती है, भगवान की सेवा, भगवान को सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, ब्रह्मा जी 14वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्म स्तुति में 10वें स्कंद में, कि भगवान के जो लाल होठ हैं वो क्या निर्माण करते हैं, हमारे हृदय में इच्छा जागृत करते हैं कि हम भगवान की सेवा कैसे करें। और भगवान जब स्माइल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं, तो उनके जो दांत हैं मोतियों के पंक्ति की तरह सुंदर दांत हैं, तो उसका जैसे सत्व क्या करता है, सत्वगुण किसी चीज को संतुलित करता है या स्थैर्य प्राप्त करता है, वैसे हमारी सेवा करने की इच्छा को उसको स्थैर्य प्राप्त करा देता है। हाँ, और भगवान ने पगड़ी इतने सुंदर बांधी हुई है, भगवान ने कैसे सुंदर मोर पंख लगाया हुआ है, तो ये देखने से हमारी आँखों की जो इतने साल की जो प्यास है, हाँ, वो बुझ जाती है। तो ऐसे नहीं कि अरे भगवान के सामने, हाँ, एक दो दो 3 बार कर लिया और भाग गए, ऐसा नहीं है। तो भगवान का पूरा दर्शन लेकर भगवान का प्रार्थना स्तुति करना चाहिए कि हे भगवान, कि मैं किस चंगुल में फंस गया, क्या मेरी मत मारी गई थी, कि मैंने सोचा कि मैं आपके बिना संतुष्ट रह सकता हूँ, और इस भौतिक जगत में मैं क्या अनेक प्रकार के कष्ट, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक कष्ट को प्राप्त कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेरा संबंध आपके साथ है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं अधिभौतिक आदि दैविक कष्ट से, लेकिन मैं आपकी सेवा करता रहूँ, आपके साथ का संबंध मेरा, इसलिए हमारे मदन मोहन देव उधर उपस्थित है, राधा मदन मोहन जी, उनका भी दर्शन ले लीजिए, उनको संबंध विग्रह कहा गया है। संबंध विग्रह का मतलब है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। हर एक का भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है। कोई भगवान भगवान का पिता या माता के रूप में सेवा कर सकते हैं। ये अपना संबंध है हर एक का व्यक्ति। ये तो संबंध समझने में काफी समय लगेगा, लेकिन चालू तो हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम भगवान के दास हैं, वहां से हम चालू कर सकते हैं। और फिर हम भगवान को पत्र पुष्प अर्पण कर सकते हैं, फल अर्पण कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हाँ, भगवान राम ने क्या क्या स्वीकार किया था, शबरी के बेर का स्वीकार किया था। और हाँ, शबरी रोज भगवान के लिए बेर लाती थी, सोच के कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे करके। कभी ऐसा नहीं कहा, अरे हाँ इनका प्रॉमिस तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, चलो जब ही आएंगे तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं। तो उत्कंठा के साथ भगवान को, भगवान कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से जब हम अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करने करने के लिए उत्सुक है। स्वीकार क्या, अगर भौतिक भक्ति भाव से अगर हम अर्पण करेंगे तो जैसे भगवान खींच के कभी कभी हाथ से लेते भक्तों के। हाँ सुदामा का विप्र जब भी आए थे, हाँ तो भगवान ने स्वयं अपना जो रुक्मिणी पट्टरानी है उसके शैया पे उसको बिठाया, और उसके पैर धोए, उसको चामर किया और कहा कि अरे मित्र तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। तो सुदामा तो ऐसा पीछे से छुपा रहा था, बोला था अरे ये तो लक्ष्मी का पति है, हाँ मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो क्या ये पोहे लाया हूँ, मैं क्या बोलते पोहे को, पोहा ही बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो वो भी उसको को मैं छोक मार के कुछ चिवड़ा वगैरह नहीं बनाया है, हाँ केवल पोहा है। लेकिन भगवान वो खींच के लेते हैं उनके हाथ से, और जब खाते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐसा मैंने स्वादु पकवान मेरे पूरे जीवन में नहीं खाया। किसके सामने कह रहे हैं, रुक्मिणी के सामने कह रहे हैं। अपने पत्नी के से डर नहीं रहे, ये बाद में पत्नी बोलेगी ए हाँ मैं इतना रोज 56 भोग खिलाती हूँ, तुमको ये पोहा पसंद है। तो इस प्रकार से कुछ भोग अर्पण कर सकते हैं, मंदिर मार्जन कर सकते हैं। जब भी गुंडीचा मार्जन में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे गुंडीचा मंदिर को मार्जन किया था, और कहा कि हाँ वो मार्जन करते करते हृदय भी कैसे हो गया, मंदिर की तरह ही स्वच्छ निर्मल हो गया, उज्ज्वल निर्मल शुद्ध हो गया। और क्या कर सकते हैं, भगवान की जब पालकी निकलती है तब पालकी के पीछे पीछे जा सकते हैं, या आगे आगे भी जा सकते हैं। अरे आज 4 बजे पालकी है, हाँ आज 4 बजे पालकी है, तो सभी उपस्थित रहने का कृपया प्रयास कीजिए। परिव्रजा रथानुगमन, रथ के भगवान के रथ के पीछे हम जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथपुरी में आप कौन कौन गए हैं, रथ यात्रा या इधर भी अभी रूप रघुनाथ प्रभु के नियोजन से वाड़ा में भी अनेक जगह पे रथ यात्रा होती है। तो कहा है पुराणों में कि जो कोई रथ को खींचता है या फिर रथ का चक्का भी देखता है तो उसको संसार के चक्र में वापस फंसना नहीं पड़ता। जो जो भगवान की रस्सी खींचता है उसको संसार की रस्सी वापस बांध नहीं सकती। तो इस प्रकार उत्सव, भगवान के विविध प्रकार के उत्सव होते हैं, झूलन यात्रा होती है, जल क्रीड़ा होती है। हाँ तो इस विविध प्रकार के उत्सव में हम सहभागी होना चाहिए। संवाद, साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, आपको लगता होगा कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन भगवान के आप सामने आकर आप भगवान के साथ बात कर सकते हैं। चाहे आजू बाजू के लोग आपको आपको पागल समझे, लेकिन आपके जो हृदय में जो है वो आप भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना व्यक्त कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से और आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, वो आप भगवान के साथ बात कर सकते हैं। आज ही सुबह मुझे शिवानंद श्याम प्रभु ने कथा बताई जो मैं बताऊंगा, कि एक दक्षिण भारत में वरदराज करके कांचीपुरम में एक मंदिर है, तो वहाँ के बहुत बड़े पुजारी भक्त कांचीपुरण करके थे जो रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो एक बार एक ऐसे ही भक्त आए और कांचीपुरण से जी से पूछा, क्योंकि वो कांचीपुरण प्रसिद्ध थे, सब लोग जानते थे कि वो भगवान की व्यक्तिगत सेवा करते हैं, भगवान को चामर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगाते समय भगवान स्वयं वरदराज उनके साथ बात करते हैं, तो ऐसे ही उनकी ख्याति थी। तो ख्याति सुन के एक भक्त आया और उनको पूछा, कांचीपुरण जी से पूछा, कांचीपुरण जी क्या आप मुझे एक मे, मे, मेरा एक काम कर सकते हैं क्या कृपया। तो बोले क्या बात है, तो बोले जब भी आप भगवान की सेवा करेंगे मेरे लिए पूछिए ना कि मैं इस जन्म के बाद अगले भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं, ऐसा पूछिए। तो कांचीपुरण बोलते हैं ठीक है मैं पूछता हूँ। तो अगली बार जब भी भगवान को हवा कर रहे हैं व्यजन लेके, तो वरदराज जी बोल रहे हैं क्या हुआ, हाँ कुछ पूछना चाहते हो। तो कांचीपुरण कहते हैं कि हाँ एक भक्त ने आया था, मुझे पूछ रहा था, वो काफी जिज्ञासा उसके मन में थी कि इस जन्म के बाद क्या वो भगवत धाम जाएगा। तो वरदराज कहते 100% जाएगा, बताओ उसको। तो वो कांचीपूर्ण, उस जब भी दूसरे दिन भक्त आते हैं, बोलते हैं कि कांचीपूर्ण जी आपने पूछ लिया? तो कहता है कि हाँ मैंने पूछ लिया। तो क्या कहा भगवान ने? तो बोलता है गुड न्यूज। बोलते हैं आपको, आप इसी हाँ जन्म के बाद भगवत धाम चले जाओगे। तो बहुत प्रसन्न होकर चला जाता है। फिर बाद में कांचीपूर्ण के मन में एक विचार आया, अरे ये प्रश्न मैंने तो कभी नहीं पूछा भगवान से। तो अगली बार जब मैं सेवा करूंगा तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा। तो वो सेवा कर रहे हैं लेकिन भगवान से कैसे पूछे, तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं हाँ कि कांचीपूर्ण जी कुछ पूछना चाहते हैं? तो बोलते हाँ भगवान, आपने उस भक्त को तो बता दिया कि वो इस जन्म के बाद भगवत धाम जाएगा। तो बोले मेरा क्या, क्या मैं जाऊंगा? तो वरदराज कहते हैं नहीं नहीं तुमको बस टाइम है थोड़ा। तुमको समय है। तो कह रहे अरे ऐसा कैसा, हाँ उस भक्त के साथ तो आप बात भी नहीं करते, मेरे साथ तो आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, हाँ किधर गड़बड़ किधर है? तो भगवान कहते क्यों? क्योंकि उसने आपका सहारा लिया, आपका आश्रय लिया, आप भक्त हैं और वो बना भक्त का भक्त, तो उसको मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा, मैं पहला प्राधान्य उसको दूंगा मैं। तो ये सुनकर कांचीपूर्ण क्या करते हैं, भगवान का हवा कर रहे हैं, तुरंत चामर छोड़ देते हैं और भक्त की सेवा करने के लिए भाग जाते हैं। फिर बाद में भगवान बोलते हैं अरे ये क्या बता दिया मैंने उसको, हाँ अभी मेरे मुझे गर्म हो रहा है। ये सेवा छोड़ के चला गया भक्तों की सेवा करने के लिए। तो कहते अरे बोला के लाओ उसको कांचीपूर्ण को। इस प्रकार कांचीपूर्ण वापस अपने सेवा में नियुक्त होते हैं। तो इसलिए भगवान के साथ आप, चाहे भगवान आपके साथ ना बात करें लेकिन आप भगवान के साथ बात कर सकते हो। कभी कभी कोई एक मेरे मोबाइल के साथ ऐसा हुआ था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उस पार सुनाई देता था लेकिन वो जो बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं देता था मुझे। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? मेरे बात हाँ बाद में मैं कुछ तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो वो ठीक हो गया प्रॉब्लम, लेकिन क्या होता था मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है लेकिन वो क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ तो ऐसा वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ठीक है एटलीस्ट एक साइड से तो जब भी मुझे काम है तो मैं तो कॉल करके बता सकता हूँ कि ऐसा 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 है करके। तो वैसे ही हम भगवान के साथ आपके मन में जो है वो बता सकते हैं। जब भी वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो आप भी भगवान का भगवान क्या बोल रहे हैं वो आप हाँ समझ सकते हैं। अभी तो थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा एक प्रॉब्लम है लेकिन हाँ भगवान तो एक साइड तो चालू है, हाँ उसका तो हम उपयोग कर सकते हैं। तो उसके पश्चात कह रहे हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करने का सबसे जलद तरीका क्या है, तो महाभारत में लिखा है कि एक भगवान भगवान के भक्त विग्रहों की सेवा करते थे, मूर्ति भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे। तो विग्रहों की सेवा करते थे और सोचते थे कि ये केवल विग्रह नहीं है, ये मेरे पुत्र है, ऐसा सोच के सेवा करते थे। ये मेरा बेटा है, अभी ये अभी हाँ शीत का समय आ गया है, अभी उसको स्वेटर पहनाना चाहिए, अभी क्या है गर्मी का मौसम आया, अभी उसको सूती कपड़ा पहनाना चाहिए, ऐसा सोच के उसका सेवा करते थे विग्रहों का। अभी सुबह का समय, अभी दूध का पदार्थ खिलाना चाहिए, अभी शाम का समय, अभी ये पदार्थ खिलाना चाहिए, ऐसा सोच सोच के वो सेवा करते थे। तो क्या हुआ उसका परिणाम, अगले महाभारत में ये कथा आती है, अगले जन्म में वो अपने जो भौम वृंदावन में गोकुल में एक नंद महाराज के एक गोप बन जाते हैं। नंद महाराज का जो पूरा गोपों का समुदाय है, हाँ समाज है, उसमें गोप बन जाते हैं। और जब भी भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं हाँ तभी क्या हो जाता है कि सभी ग्वाल बालों का रूप भगवान ले लेते हैं और एक साल तक सभी व्रजवासियों का वात्सल्य प्रेम का स्वीकार करते हैं। तो उस समय वो जो व्यक्ति था जिसने पिछले जन्म में भगवान के विग्रहों का पुत्र के रूप में सेवा किया था, तो उसको स्वयं भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो आपका भाव है साधना के स्तर में वही आप पाएंगे जब भी आप प्रगत होंगे भक्ति में। तो इधर हम थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि अभी आरती का समय हो गया। तो ये एक ही हम क्या बोलते हैं मैसेज या संदेश लेकर जा सकते हैं कि हमारा जो अभी स्थिति है हाँ, जो हम भूल चुके हैं भगवान को, तो हम उसको वापस याददाश्त आने का तरीका है कि हम मंदिरों को बार बार दर्शन करें, भगवान की विविध उत्सवों में सहभागी हो जाएं, उसमें कीर्तन और नृत्य जरूर करें। और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना भगवान को पसंद है। जैसे आपके बर्थडे है, मान लो आपके कोई मित्र हैं, तो एक एक मित्र आके बोला अरे हैप्पी बर्थडे, दूसरा आया बोला हैप्पी बर्थडे, ऐसा किया तो आपको अच्छा तो ज़रूर लगेगा। लेकिन मान लो आप शाम तक कोई नहीं आया और शाम को आप रूम में आते हैं और अचानक आपके 100 मित्र खड़े हैं और एकदम सरप्राइज देते हैं आपको, तो कभी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब साथ में आते हैं। तो वैसे संकीर्तन का मतलब है सब साथ में आके कीर्तन करते हैं। जब भी हम जप करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता ही है, लेकिन जब सब साथ में आके कीर्तन करते हैं तो भगवान थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं, अरे सब साथ में आके कीर्तन कर रहे हैं। कलयुग में थोड़ा मुश्किल से पता ऐसा नहीं हो पाया जाता, दुर्लभ है। तो हमारे आपस के भेदभाव को मिटा के जब हम साथ में आके भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो अभी महाआरती होगी।